आइए शुरू करते हैं पारा नंबर 6। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। पारा नंबर 6। पता चला आपको 5 पारों के पूरे होने का? मुझे तो नहीं पता चला, ऐसे लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा। और 5 हुए ना, फिर 10 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 25 हो जाएंगे और फिर 30 हो जाएंगे। हमें क्या मिल रहा है? अपना मुहासबा करें 5 पारों के एंड पे, क्या मिला, कहाँ पहुँच गई, कहाँ खड़ी हूँ, अल्लाह क्या मेरा क्या मुकाम है, क्या मैं रदी अल्लाह अन्हुम व रदू की कैटेगरी में आती हूँ? और अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आइए देखते हैं पारा नंबर 6 को। ला युहिब्बुल्लाह का टॉपिक है, कैसे अल्लाह ताला ने अपनी नापसंदीदगी से बात शुरू की है। इस बारे में अजमत सहाबा के नाते से हम जो मौजू देखेंगे वो क्या है, इख्तलाफ से बचकर अपनी जिम्मेदारी पे लगे रहना। और आज इस बारे की शख्सियत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हो हैं, जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या थी। एक हदीस है हमारे सामने, अल्लाह के नबी ने एक मौके पे दुआ की थी, अल्लाहुम्मग़फिर ली खालिद इब्निल वलीद कुल्लमा औदा फीही मिन सद्दिन अनसबीलिक। खालिद बिन वलीद ने एक मौके पे आके अल्लाह के नबी से कहा कि ज़माने जाहिलियत में मुझसे जो गलतियाँ और कोताहियाँ हुई थी, मैं उसकी मगफरत तलब करता हूँ, ख़ासतौर पर जब ये मुसलमान हुए थे और 3 लोग इकट्ठे मुसलमान हुए थे। इंशाल्लाह भी इनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊँगी आपको। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि आज तो मक्का ने अपने जिगर गोशे हमें दे दिए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को बड़ा गम था कि मैंने तो पिछली ज़िंदगी में बहुत ख़ताएँ की हुई हैं। तो आपने क्या दुआ की थी, या अल्लाह खालिद बिन वलीद को तेरे रास्ते में जो भी गलतियाँ हुई वो बख्श दे। और खालिद बिन वलीद वो थे जिनका लक़ब सैफुल्ला था। इसके बारे में शायर कहता है, रोमतुल कुबरा की अजमत तेरे कदमों पर निसार, तेरे परचम के जलू में दीन बरहक का वकार, रोब तेरा कैसरो किसरा पे था छाया हुआ, तेरे दम से कुफर का चेहरा था मुरझाया हुआ, रोमतुल कुबरा पे छाया रोबे शाहाना तेरा, किस्सा यरमूक दोहराता है अफसाना तेरा, फिर जवाले मसनदे अफरासियाब आ ही गया, किश्वरे बातिल में आखिर इनकलाब आ ही गया। मुझे यकीन है आपको आधी बातें भी नहीं समझ आ रही होंगी। अब हमारी उर्दू भी तो माशाल्लाह ऐसी हो चुकी है। तो हकीकत यह है कि ये दोनों बातें, आज का टॉपिक और आज की ये शख्सियत, सूरत निसा की आयत 148 के नाम है। आइए थोड़ा सा उसका मज़मून पढ़कर इन सब पे बात करेंगे। सूरत निसा की आयत 148 से 176 पे ये पारा पूरा होता है। शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम मन ज़ुलिम वकान अल्लाहु समीयन अलीमा। पहला रुकू है 148 से 152। टॉपिक है ज़ाहिर और बातिन में भलाई के काम। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मज़लूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा करो या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस अल्लाह यकीनन पूरी माफ़ी देने वाला और पूरी कुदरत वाला है। जो लोग अल्लाह ताला के साथ और इसके पैगंबरों के साथ कुफर करते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला और इसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग ये कहते हैं कि बस नबियों पर तो हमारा ईमान है और बस पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके दरमियान राह निकालें, यकीन मानो कि ये सब लोग असली काफिर हैं और कुफार के लिए हमने एहानत अमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में कोई फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह ताला इनके पूरे सवाब देगा, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत वाला और बड़ी रहमत वाला है। क्या खूबसूरत अंदाज के साथ पारा शुरू होता है। जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है उनको इस बात की बहुत फिक्र लग जाती है कि मेरी किस बात से अल्लाह मोहब्बत करता है और किस बात से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। हमारा शुरुआत अल्लाह युहिब्बुल्लाह, अल्लाह डजंट लाइक दोज, या अल्लाह उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। सवाल है कि अल्लाह किन चीज़ों को पसंद नहीं करता। नंबर एक, बुराई खुलेआम करने को, किसी की बुराई देख ली, किसी में कोई खामी देख ली, किसी का कोई नक्स देख लिया और उसको फैलाने लग गए, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि मज़लूम को फरियाद का हक है, इसी तरह किसी एक को भी नबी ना मानना सारे अंबिया का इनकार है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत है सही बुखारी में, 2442 नंबर है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस इस पर जुल्म ना करे ना जुल्म होने दे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करे, अल्लाह ताला इसकी कयामत के दिन की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, अल्लाह ताला कयामत के दिन इसके ऐब को छुपाएगा। कितनी खूबसूरत बातें इसमें, क्या पता चला कि इस रुकू में आपको मुझे अल्लाह की रज़ा को पाने वाले जो आमाल दिख रहे हैं उसमें सबसे पहली बात क्या है कि लोगों का बुराई के साथ तذکرہ नहीं करना। अब चंद बातें नोट कीजिए जिससे आप इंशाल्लाह इस पूरे पारे के थीम को समझेंगे। आप देखिए कि इंसानों की जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा किसी से इंटरेक्शन ना हो, और दूसरी बात ये नहीं हो सकती कि सब अच्छे ही लोग हों। आप अपनी ज़िंदगी के जिस फील्ड ऑफ लाइफ को देखेंगे, आप देखेंगे एक छोटे से घर में अगर देवरानी और जेठानी रहती हैं, नन्द भावज हैं, दो सगी बहनें, हत्ता के माँ बेटी, और कुछ नहीं तो शौहर बीवी, माँ बाप और बच्चे, ये तो आम तौर पे घरों में होते हैं ना। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो कहीं दादी है, फूफी है, खाला है, तो फैमिली सेटअप से लेकर आप थोड़े से बाहर निकलते हैं, आप स्कूल में आ जाते हैं, स्कूल में आपके क्लास फेलोज हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको गिला हो सकता है ये मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, ये फेवरेटिज्म का शिकार है, यानी बच्चों को भी बहुत गिले होते हैं। आप ज़रा से बड़े होते हैं तो सिबलिंग जेलेसी आ जाती है, और वो क्या होती है कि जी अब्बू को गुलाम भाई से ज़्यादा प्यार है, अम्मी उसकी साथ देती हैं। बहन होने के नाते आपको आता है जी मेरा इतना हक नहीं देते, भाई को ज़्यादा अहमियत देते हैं ना। तो जो बात मैं कहना चाहती हूँ ना, इंसानों की इस दुनिया में हर जगह टकराव होगा, दो बर्तन होंगे वो टकराएंगे, जहाँ काम होगा वहाँ फैलावा तो होगा। फिर आप ज़रा से बड़े होते हैं, कैरियर बिल्डिंग है, तो उसमें आपको अपनी जॉब पे रह हुए लोगों के साथ क्लैश महसूस होगा, आपको लगेगा कि इधर बॉस मेरे साथ ये करता है वो करता है, हम पेशा दुश्मन हमेशा, आप कारोबार करेंगे तो ये होगा। यानी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं कि आपको लोगों से शिकवा और गिला होगा, और जब आपको लोगों से गिला और शिकवा होगा उस वक्त दिल क्या कहता है। और अभी जो पिछले पारे में जो शैतान की बातें पढ़ी थी ना, कि वो तो आपको हर लम्हे क्या करना चाहेगा, टकराओ टकराओ, मारो इनको, बुरा बन जाओ। तो आज हमने जो थीम लिया है, आप ज़िंदगी के किसी फील्ड में आए, आप जॉब पे आ गए, फिर आपकी शादी होगी, फिर शादी के वक्त पे आपको कितने गिले पैदा होंगे, अपने माँ बाप से होंगे, बड़े भाई की शादी ऐसी की मेरी ऐसी नहीं की, बड़ी बहन की शादी ऐसे की मेरी नहीं की। फिर आगे जाएंगे तो ससुराल में आपके लिए गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। आप ज़रा सा दीन के काम पे आ जाएं, आप कहते हैं मैं ज़रा अच्छा काम करूं, कोई आखिरत बना लूं, आप किसी दीनी इदारे में आएंगे, आपको वहां से मसले दिखेंगे, कहीं लीडर के साथ, कहीं साथियों के साथ। आप ज़रा सा आगे जाएंगे, आप मस्जिद बना ले, मस्जिदों में झगड़े होंगे, और आप बड़े तप तपाक के साथ नेकियां करने निकलेंगे और पांव पटकते हुए वहाँ से निकल आएंगे और कहेंगे मैं इधर नहीं रह सकती, मेरा यह मामला नहीं चल सकता। ये नहीं ऐसे। तो आज की टिप, इख्तलाफ से बच के असल जिम्मेदारियों पे लगे रहना, ये थी अज़मत सहाबा। सहाबा कराम को अल्लाह सुबहाना ताला ने ये खूबी दी थी कि उनको कितना भी गिला होता, कितना भी शिकवा होता किसी से, और वो क्या थी कि जब जहाँ जैसे भी जो मामला आया अपना काम ना छोड़िए। मैं आपसे कहती हूँ कि आप इधर आएंगे फिर ही मैं आऊँगी, तो आप नहीं आते तो मैं ना आऊँ, आपने ना आकर मेरे ना आने का फैसला कर दिया, मेरी दोस्त जाएगी तो मैं जाऊँगी, भाई करेगा तो मैं ये काम करूँगी, आप ये करेंगी तो वो करूँगी, नहीं, आप में से मेरे में से हर बंदा जो करेगा खुद भरेगा। हमने इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की ये जो खूबी चूज़ की है ना, तो इसको समझिएगा। صحابہ کرام کو اللہ نے مختلف خوبیاں دی تھیں، لیکن یاد رکھیے ان کی طبیعتیں مختلف تھیں. ابو بکر عمر سے بالکل مختلف تھے. آج جس شخصیت کو میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ بہت سوچ سے کیا ہے، خالد بن ولید، کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ دو تلواریں ایک نیام میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یعنی حضرت عمر اور خالد بن ولید، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا، اتنی طاقت دی. وہ کون تھے، کیا تھے، وہ تو بعد میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بتا دوں گی، لیکن اللہ کے نبی کے ایسے پیارے صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونی من کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا. یہ تھے وہ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نام آپ نے ان کا سنا ہوگا، خالد بن ولید ہیں. قبیلہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. اگر صرف ایک ایک لفظ بھی لکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ایک صفحے پہ آپ کو ان کی پوری لائف ہسٹری مل جائے گی. اور مکہ کے شہر میں قبیلہ بنو مخزوم کو اتنی عزت حاصل تھی جیسے آج کسی بڑے مشہور خاندان، کئی دنیا میں خاندان مشہور ہے، اس کو ذہن میں لے آئیے. اور خالد بن ولید جب پیدا ہوئے اپنے خاندان میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی عزت والا خاندان، اور پھر ذرا سے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ عام لوگوں سے زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. ان کی شخصیت کھلی ہوئی، نکھری ہوئی تھی، ہنر مند تھے، اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی، شجاعت، جرت، لڑنے بھڑنے میں ماہر اور بھرپور لاجواب، اور سب سے بڑی بات کہہ لیں لیڈرشپ کوالٹیز تھی. یہ وہ خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اپنی سوسائٹی میں یہ بہت مشہور ہو گئے، لوگ ان کو آئیڈیلائز کرنے لگے. آج بھی ایسے لیڈرس ہوتے ہیں، ہر بندے کو لوگ فالو نہیں کرتے، یہ بھی بتا دوں. ہر ایک لیڈر لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر میں ایک جرأت ہونی چاہیے، لیڈر میں کشش ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے. تو حضرت خالد بن ولید کو مرسمرائزڈ قسم کی پرسنالٹی اللہ نے دی. آپ کہہ لیں کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ افسانوی شخصیت، طلسماتی شخصیت تھی ان کی. اور خالد بن ولید بھی باقی لوگوں کی طرح ابتدائے اسلام میں اسلام کی مخالفت پہ رہے. مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان جو تین بڑی جنگیں ہوئی تھیں، جس میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اس میں خالد بن ولید شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت تک یہ کفر پہ تھے. غزوہ احد میں جو 3 ہجری میں پیش آیا، یہ لشکر اسلام میں نہ صرف یہ کہ موجود تھے، بلکہ ان کی اس جگہ موجودگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا. تیسرے پارے میں لوگوں نے سنا نا، یعنی درہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی بہت امپریس تھے خالد بن ولید سے، اور آپ ان کو ایڈمائر بھی بہت کرتے تھے. اور جب کبھی خالد بن ولید کا تذکرہ آتا تو آپ کہتے تھے ان خوبیوں والا بندہ دیکھنا ضرور ایمان لائے گا. غزوہ احد میں یہ تھے وہ جنہوں نے گھاٹی کی جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے جا کر حملہ کیا، اور ان کی وجہ سے کہہ لیں کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کتنے برے چیز بینڈ ہوئی کہ اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے، اور خالد بن ولید کو اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی اس کا ریگریٹ رہا کہ میں نے احد میں یہ حرکت کیوں کی. تیسری جنگ جو ان کے کفر کے دور میں ہوئی تھی وہ غزوہ خندق تھی، 5 ہجری میں ہوئی تھی. خالد بن ولید اس لشکر میں موجود تھے، لیکن اس موقع میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، صرف وہ خندق کے ادھر اور مسلمان دوسری طرف تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پائی، جنگوں کا سلسلہ تھم گیا. 2 سال تک جنگ نہیں ہوئی، 10 سال کا نو وار امپیکٹ تھا، لیکن 2 سال تک. اب یہ جو دور تھا نا، میں آج جب یہ سارا پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ واقعی سچ ہے کہ آسان تکرہ شعین وہو خیر الکم. کئی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں خیر ہے، جیسے کرونا کسی کو نہیں اچھا لگا لیکن کرونا سے کتنی خیر آئی. ہم نہیں کہتے کہ کرونا واپس آ جائے لیکن شر میں خیر ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سال تھے نا، اس میں جنگیں چونکہ نہ ہوئی نا، تو مکہ کے وہ لوگ جو فطرت پہ تھے، جن کے دل میں خیر تھی نا، نفرتوں اور عداوتوں اور جذبات کا تو موقع ہی نہ آیا کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی، تو ٹھنڈے دل سے خوش سمجھ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو لگا کہ آخر اس شخص کو ملتا کیا ہے، اسلام میں خوبی کیا ہے، اور بالآخر پھر وہی ہوا، جن کے اندر فطرت میں سچائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہونے لگے. بہت سارے لوگ غور و فکر کے بعد اس دور میں دل کے اندر نبی اور اسلام کے خلاف نفرت اور عداوت کی چنگاریوں کی بجائے ایمان کی محبت لے کر مدینہ کی طرف چلنے لگے. آپ کہیں کہ گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے، اور ان کی جگہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی. یہ تھا وہ دور جب خالد بن ولید جیسا زیرک جینیس سمارٹ ہینڈسم بندہ بدلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. اور یہ سچ ہے, آپ خود بھی اپنے اسلام کے طرف شعوری طور پہ آنے کے دنوں کو یاد کیجئے. کوئی بندہ ہوتا ہے جو آپ کو اسلام پہ لے آتا ہے, اور میں کہتی ہوں اگر آپ کو اللہ نے اچھی پرسنالٹی دی ہے اس کو اسلام کے لیے دکھائیے. لوگ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے اسلام میں آگے, یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ نے اگر آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے نا, تو اپنی اچھی شکل و صورت کو نئے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے. اللہ نے آپ کو اچھی کرسی میز جگہ اچھا گھر دیا, آپ کا اچھا گھر کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے, آپ کا صدقہ جاریہ ہے. آپ کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے, آپ وہ پہن کر لوگوں کو دکھا دیں کہ نئے نئے لوگ ڈریں نا کہ اسلام پہ آ کر لوگ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں, ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. تو حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا جو پازیٹیو رخ تھا نا, وہ امپریس کرنے لگا. کہنے لگا کہ عام لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, دھاڑ ساڑ. مکہ والے کوئی آرگنائز لوگ تو تھے نہیں ہیں. تو پچھلی تین جنگیں جو بڑی بڑی ہوئی نا, اس میں خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وار ٹیکٹس سے بہت امپریس ہوئے. انہوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے, باقی لوگ لڑائی کرتے ہیں پیسے کے لیے, جنگ جو ہیں جا کے خون کے پیاسے ہیں اور کبھی بدلے لے لیتے ہیں, لیکن اس شخص نے کبھی اخلاقی اقدار کو پامال ہی نہیں کیا. میدان جنگ میں لوگ نبی کے اخلاق کی, انصاف کی, امانت کی, دیانت کی, انسانیت اور شرف کی گواہیاں دینے لگتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو فتح اور شکست سے بھی کوئی تعلق نہیں, یہ تو لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں بس. ان باتوں سے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا, کہنے لگے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کیسے. اب آپ دیکھیں جن کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ فارغ نہیں رہ سکتے, وہ اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتے ہیں. کہنے لگے کہ میں مدینہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. دل میں اسلام آ چکا تھا, آپ چپکے سے مکہ سے نکلے, مدینہ کے راستے پہ جانے لگے. اب دل میں خیال آیا, اب دیکھیں میں نے اتنی ان کی لائف ہسٹری سے حکمتیں سیکھی ہیں اس سبق کی تیاری میں, کہ اگر میرے کام آ گئیں تو بہت زیادہ میں اسے فائدہ اٹھاؤں گی. کہنے لگے میں اکیلا جو جا رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہ جاؤں, تنخواہ جاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہے, سفر کیسے کٹے گا, میں کسی ہم خیال کو ڈھونڈتا ہوں, میں کسی ایک کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کے میرے لیے, آپ یہاں روز اگر اکیلے آتے ہیں نا تو آپ چھٹی کر لیں گے, آج نیند آ گئی, غلبہ آ گیا, سستی ہے, اتوار ہے, سنڈے ہے, بارش ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کسی دوسرے کو اپنے سر پہ مسلط کر لیں جو آپ کی بیل کر دے, رات کو تراوی کے لیے کسی ایک کو اپنا بڑی بنا لیں. یعنی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بڑی بنا لوں تاکہ رستہ بھی اچھا گزرے گا اور مزہ آئے گا. ان کا ایک دوست تھا عثمان بن طلحہ, کہنے لگے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ میری بات سمجھے گا. یہ آپ کے بھی عمل کی باتیں ہیں, اپنے بچوں کو بڑی بنا لیں, اپنے شوہروں کو بڑی بنا لیں, دیورانیوں کو بنا لیں. نیکیوں کا سفر تنہا بہت مشکل کٹتا ہے. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ اکیلے جاؤ, اور اگر تم زیادہ دیر تک چلنا چاہتے ہو تو دوستوں کے جھرمٹ میں جاؤ. جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے اکیلے واک نہیں ہوتی. ایک بڑی بنا لیں پھر دیکھیے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. انہوں نے عثمان کے ساتھ جا کر بات کی, تھوڑا اسلام کی بات, نبی کی بات. اب یاد رکھیے لوگ اپنے دوستوں کی بات بہت سنتے ہیں. ہزار فلائر آپ بانٹ دیں اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جو کسی ایک دوست کی دوسری دوستوں کو کال سے فائدہ ہوتا ہے. از اٹ ٹرو؟ آپ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ورڈ بائی ماؤتھ, آپ کی بات سن کے زیادہ لوگ دین پہ آتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے جتنے لوگ دورے قرآن سن رہے ہیں اس وقت, لاکھوں میں سن رہے ہیں ماشاء اللہ, زیادہ دوسروں کے کہنے پہ سن رہے ہیں. اس نے میسج کیا, اس نے آگے کیا, اس نے فارورڈ کیا, اس نے کیا. تو خالد بن ولید سے یہ سبق سیکھیے کہ انہوں نے اپنے دوست کو لیا, جب دوست نے دوست کی زبان سے یہ بات سنی, کہنے لگا خالد یقین جانو اب تو میرے بھی ایسی خیالات بن گئے ہیں. اور پھر جو خالد اور کہہ لیجئے کہ اس شخص میں دوستی ہوئی ہوگی نا, وہ بڑی پکی گوڑی دوستی ہوتی ہے. عام دوستیاں آپ کی ہیں, لیکن جو اب دین کے دوست بن گئے ان کا تو بہت اچھا ہے. کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں, اور جہاں دوست ہوں وہاں دل تو لگتا ہے. کہنے لگے صبح ہوگا تو نکل جائیں گا. اب آپ سوچیے دل میں ایمان کا نور ہے اور خب رسول کا طوفان چھپائے بیٹھے, یہ دونوں سوئے منزل چل پڑتے ہیں. یادگار اور مبارک سفر. مکہ سے نکلے, ابھی تھوڑی دور گئے, ان کو وہاں سے عمر بن العاص آتے دکھے. یہ بہت بڑے سردار تھے, رئیس تھے کہہ لیں اپنی زبان میں, معزز ترین شخصیت تھی. یہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے ارے بھائی تم کیسے. ایک تو وہی بات ہے کہ دونوں ہی بڑے کلاس کے لوگ تھے, ہائی کلاس کے لوگ تھے. باتیں ہوئی, کہنے کدھر جا رہے ہو, کیا کرنے لگے ہو. عمر بن العاص نے کہا ایک بات ہے میرے دل میں, اگر میں آپ کو اس شرط پہ بتا دوں کہ تم کسی کو نہ بتانا تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کیا؟ कहने लगा मैं मोहम्मद की तरफ जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। कहने लगा कि मेरे दिल में है और मेरी मंजिल मदीना है, और वही था उनका मकसद जो इनका, इन्होंने कहा सच्ची हम भी इसीलिए जा रहे हैं। अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक बात आज दिल की तख्ती पे लिख लीजिए, अल्लाह अपने रास्ते में निकलने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। वो गारे हिरा से सुए हरम कोई आया, और अल्लाह ने आज 2 बिलियन लोग उसके साथ कर दिए, और क़यामत से पहले एक दफ़ा पूरी दुनिया का हर बंदा मुसलमान होगा। ये लिख के रख लीजिए, ये हदीस से पता चलता। एक सजदा दुनिया और माफिया से प्यारा होगा। याद जो आप और मैं हर वक्त रोने ही रोते रहते हैं ना कि मुसलमान अकेले, इनका कोई नहीं, इनको मदद चाहिए, ये हमारे इखलास की कमी है। बहरहाल अब तीनों चल पड़े। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि इस तवील और मुसलसल सफ़र के बाद हम तीनों जिस दिन मदीना पहुँचे, वह दिन हमारी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन था। 8 हिजरी में सफ़र के महीने में एक साथ तीनों नबी सल्लम के पास गए, और अल्लाह के नबी के तो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट थी। आपने ना कभी ताने दिए, अच्छा जी 900 चूहे खा के फला आ गया, अच्छा जी ख्याल आ गया, वल्लाह ही कभी किसी को शर्मिंदा ना किया करें। हम अपनी दोस्तों को कहते रहते हैं, फिर वो नहीं आती, और वो आखिरी दिन आती है, हम कहते अच्छा जी आ गई हैं आप मिठाई लेने, अच्छा जी आज दुआ में आप आए, आज मिठाई बंटनी थी, अच्छा आज पार्टी थी इसलिए आप आई हैं, आज दावत हो रही है, कभी ना करें। देखिए मैं इसलिए ये बातें बताती हूँ कि मैं ये सुनती रहती हूँ ना, कई लोग सिर्फ इस वजह से नहीं फिर आते कि आज हम जाएंगे तो लोग कहेंगे जी ये आज क्यों है। आप हमेशा खुशी से बात करें। यदि मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपनी उस टोन में आ गई हूँ जिसमें मैं सीरत और साहबा के किस्से पढ़ाती हूँ, मैंने खजात साहबा के दरख्शा पहलू बड़ा इंजॉय करके पढ़ाई हुई है, लेकिन अब फिर मैं क्या करूँ कि जब बात शुरू होती है तो दिल चाहता है, लेकिन इन वाक़यात को पढ़ें। बल्कि मैंने दोबारा नियत कर ली है इंशाल्लाह इसी बारे कुरान के दौरान माइट भी बाद में कोई समर कोर्स की सूरत पर एक बार फिर ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे पढ़ाना है। यकीन करें इस वक्त हमारी नस्ल को बस अब इसी की ज़रूरत है, और हमारे भी जो ईमान पुराने हो चुके हैं ना, खोटे और मायूसियों में पड़े, उसकी ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह के नबी इन तीनों को देख कर खिल उठे इतनी खुशी से। आप हमेशा मेहमानों को देख के खुश होते, गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करते, और कहते हैं कि बताइए कैसे आना हुआ। कहते हैं मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं कि मैंने इससे रोशन दिन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिस दिन मैंने नबी सल्लम के साथ मुलाकात की और उस वक्त आपके पास आया, और आप जितने खुश थे और मैं जितना खुश था। अल्लाह के नबी ने क्या कहा होगा आगे से? आपने कहा कि खालिद, मुझे तुम्हारी शख्सियत में दानिशमंदी के ऐसे आसार दिखाई देते थे कि जिनकी बिना पे मुझे यही उम्मीद रहती थी कि तुम खैर के रास्ते पे ज़रूर आओगे। आप भी कह दिया करें, मुझे तो पहले ही पता था आप इतनी अच्छी हैं, बस थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन मुझे पता था आप आएंगी। आप देखिए लोगों के दिलों में खुशी लाइए। दीनदार होने का मतलब डंडा पकड़ के हर वक्त माथे पे तेवरी डाल के लोगों पे रोब डालना नहीं होता, और तुम जहन्नमी, तुम फलां जगह, तुम उधर दर के असफल, उधर घुस जाओ उधर घुस जाओ, खुदा के लिए लोगों के दिल की खुशी बनिए। और ये लोग जो हैं आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपका शौहर मजलूम है जो बेचारा आपके साथ जोड़ दिया गया, खुदा के लिए अपने घर वालों को दीन के नाम पे ताने मेने इल्ज़ाम देना छोड़ दे, और साथ फिर कह देते हैं ही आप मुनाफिक क्योंकि आपने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी, आप फजर लेट पढ़ते हैं, आप पक्के मुनाफिक हैं। थोड़ा इल्म खाली बर्तन की तरह खटखट खटखट करता है, और हमारे इर्द गिर्द वाले हमसे ना फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर हम अकेले रोते हैं, हाय अब तो बच्चे भी साथ छोड़ गए, मियाँ भी जा रहे हैं, बो रहे हैं। नहीं, नबी ने लोगों को मोहब्बत दी थी, मोहब्बत फातह आलम, दिलों को जो मोह ले वही फातह ज़माना। आप वो क्यों नहीं बनते हो जिससे जिगरे लाला में ठंडक, वो शबनम आपका हाथ कोई थाम ले उसका दिल ना करे आपका छोड़ने को, किसी का आपसे टकराव हो जाए उसका दिल करे एक बार फिर टकराव हो। बहरहाल कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी, मैंने जो माजी में गुनाह किए मेरे लिए माफ़ी मांगे, उस पे फिर आपको वो दुआ भी सिखाई है, और अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी कि इस्लाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। कहने लगे अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कीजिए, और अल्लाह के नबी ने ये दुआ मांगी, लोगों को मोहब्बतों के साथ बुलाइए और फिर वो आएंगे। और इसके बाद फिर अमर बिलास और उस्मान बिन तलखा इन तीनों ने नबी सल्लम से बैत की, और आप पता है कि अल्लाह के नबी के लिए वो दिन कैसा होगा, आप सोचिए ना, एक ही दिन में 3 सदर मुसलमान हो जाए, 3 वजीर मुसलमान हो जाए, 3 गैर मुस्लिम हुक्मरान हो जाए। तो बहरहाल ये इनका कबूल इस्लाम था, अल्लाह ने इनसे बहुत काम लिया। सबसे पहले जो इन्होंने इस्लाम की तरफ से जंग लड़ी वो जंगे मुता थी, जाके तो पढ़ी है, यकीन करें कि इन लोगों को देखकर इंसान हैरान हो जाता है। सिर्फ 2 महीने हुए थे इनको मुसलमान हुए, और गज़वाए मूता एक ऐसी बड़ी आजमाइश थी कि जिसके अंदर आप कह लीजिए कि आपकी मेरी उम्मीद से बहुत ऊपर के हालात थे। और जब इनको मैदाने जंग में देखा तो अल्लाह ने उस वक़्त जिसको अमीर बना कर रखा था ना, उन्होंने कहा कि खालिद तुम हो अमीर। इन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर ज़्यादा खूबी है, इस जंग में तुम ये काम करोगे। और हकीकत में ये जो जंग थी, कभी आप सोच सकते हैं कि 3,000 लोग, और मुकाबले में आपको थे कितने? और रोमन्स थे, जिनको आज के दौर में भी आप गोरे या अंग्रेज़ कह सकते हैं। किस तरीके से इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद ने अक्लमंदी के साथ मुसलमानों को बचाया, ये पढ़ने और सुनने के काबिल है, जिसका इस वक्त वक्त नहीं है। कामों में लिख लीजिए, मुझे कभी रमज़ान के बाद याद दिला दीजिएगा, मैं ही आपको पढ़ा दूँ। गज़वे मूता पढ़िए। आज की सारी कॉम्प्लेक्सिटी और एहसास से महरूमी दिल से निकल जाएगी। हमारे पास ये नहीं है, हम मुसलमान कमज़ोर हैं, मीडिया नहीं है, अभी तो हमें एड चाहिए, अभी मदद चाहिए, ये चाहिए। वो एड एड्स की तरह लग जाती है आपकी जान को, और फिर आप रोते हैं, और आपके अपने प्याज टमाटर ही आपसे नहीं खरीदे जा रहे। ये उम्मत मुस्लिमा को सजा है आज हमें। आज मैंने इतनी तकलीफ़ की चीज़ पढ़ी, पता नहीं सच है कि झूठ, कि रमज़ान से पहले जो सब्ज़ी और फ्रूट 60 रुपए का था, वो रमज़ान वाले दिन 200 का हो गया, और 200 वाला 600 का हो गया। आपको पता है कि बाहर की दुनिया में हमारी ईदों पे वो मुस्लिम ग्रोसरीज सस्ती कर देते हैं, खजूरें आजकल बाहर सस्ती हैं कि मुसलमान ख़रीद लें। वो क्यों ना लोगों के दिल जीते, और आप तो लोगों की जान ले जाएंगे। क्या ये मुसलमान हैं हम? इनको पढ़ाइए जाकर ऐसे किस्से और कहानियाँ कि कैसे ये सारे मामलात हुए, और कैसे मूता से ये पलटे। अल्लाह ने इनको सिर्फ 2 माह के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। बहरहाल इसके बाद फिर इन्होंने एक और मार्का इस्लाम के नाम पे लिया, उसमें भी कामयाब हुए, हत्ता के होते होते हज़रत खालिद बिन वलीद फतह का निशान बन गए। लोगों के दिलों में ये सुपरस्टिशियस आ गया कि हज़रत खालिद की मौजूदगी की वजह से फतह होती है, इनमें कोई बरकत है। कोई कहता है इनके इस नबी के बाल थे जो आपने सुलह हदैबिया के मौके पे उठा लिए थे, और अल्लाह के नबी ने ये कहा था और वो कहा था, और ये सब कुछ करते कराते हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जब किसी को इज्जत दे, इन्होंने इस्लाम को जितना नुकसान दिया हुआ था ना कुफर की हालत में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे चुके थे। और फिर इन्होंने किस तरीके से उस दिन इस्लाम की इज्जत बचाई, इस्लाम वालों की जान बचाई, कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सैफुल्ला हैं। इनको लक़ब दिया अल्लाह की तलवार, क्योंकि ये वाकई सैफुल्ला बने थे। और जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों पे ये बिस्तरे मर्ग पे थे, घर में बिस्तर पे मरे, तो कहते थे कोई बुज़दिलों को मेरा पैगाम दे दे। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में रहूं, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो वूंडेड ना हो, लेकिन बिस्तर पे मरे। रोते थे, कहते थे मैंने इतनी जंगें लड़ी, अल्लाह ने मेरे नसीब में शहादत नहीं रखी। तो इनकी बीवी ने क्या कहा, जिस दिन नबी सल्लम ने आपको सैफुल्ला कहा था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि आपको शहादत नहीं मिलेगी। क्यों? कि अल्लाह की तलवार किसी काफिर के हाथ से टूट जाए, यह नहीं हो सकता। और आपको पता है कि एक जंग में इन्होंने एक दिन में 9 तलवारें तोड़ी। तलवारें टूटती गईं लेकिन इनके हौसले नहीं टूटे। और दुश्मन आप कहिए कि 3,000 मुसलमानों के मुकाबले में 2 लाख नॉन मुस्लिम थे, लड़ाई तो खुदकुशी थी, लेकिन क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की, पीछे आगे लेते गए। यानी ये इतने रोमांटिक वाकयात है कि यदि मुसलमान सिर्फ 3,000 हैं और दुश्मन 2 लाख, अगर मुकाबले में रहते तो मर जाते सारे। इन्होंने एक टैक्ट ऐसा किया कि किसी तरह दुश्मन को ये फीलिंग आने लगे कि पीछे से मुसलमानों की भी मदद आ रही है। यानी लीडर्स के ब्रेन अच्छे होने चाहिए। जिम्मेदारान का अगर दिमाग नहीं चलता ना, या तो दिमाग निकाल कर फेंक दे, या जिम्मेदारी को उतार के फेंक दे। वल्ला ही, वो दूसरों से पूछ के चलने वाला बंदा नहीं होता, वो दूसरों से इशारे नहीं लेता। इन्होंने क्या किया, आप इंजॉय करेंगे आप, यानी मैदाने जंग खुली जगह पे हो रहा है ना, तो इन्होंने पीछे वाले फौजियों से कहा कि अपने घोड़ों को ना उस टपे दो, टक 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 करो, उससे मट्टी उड़ी। तो जब मट्टी उड़ी ना, तो उधर रोमन खड़े वो देख रहे हैं कि इनके नई फौज आ गई। दिल पे रोबा, 2 लाख है दुश्मन और 3,000 का रोबार है, कह रहे पीछे हो रहे। सारा दिन पीछे वाली फौज को सिर्फ यही कहते रहे कि अपने घोड़ों से मट्टी उड़ाओ। तो दुश्मन कह रहे हाय और आगे, हाय और आगे। कुफर तो पहले ही डरता है। इतने में रात, ये चाह रहे थे कि रात हो जाए, दिन में तो कैसे भागेंगे, दुश्मन समझेगा, बस वही इख्तियार कर ली, मुसलमान और हार जाए, मुसलमान और पीछे हो जाए, ये नहीं हो सकता। और वाकई ऐसा हुआ कि जब रात में अंधेरा हुआ तो इन्होंने फील ये कराया कि हम पीछे से जाकर आ रहे हैं। दुश्मन को क्या लगा, कहने लगा कि ये क्या हुआ, सुबह जब हुए ना तो जो पीछे वाले थोड़े से फौजी थे उनको आगे कर दिया और अपने पीछे वाले सब वापस भेज दिए। दुश्मन ने कहा अच्छा ये जगह ठीक नहीं थी, ये कहीं दूर जाके वहाँ मुकाबला करने लगे हैं, दुश्मन भाग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज क्यों नहीं मुसलमान लीडरों को ये अकल आती, आज दिमाग नहीं है? आप जाके तो देखिए कैसे 2 जमा 2 करते हैं, टूटी मशीन आप बाहर से ले आए, यहाँ के लोग ठीक कर देते हैं आपको, वहाँ वो कहते हैं इनको फेंक दो, वो लोग पाकिस्तान में लाते हैं सब, उसको आर्टिफिशियल चीज़ें लगा लगू के सेट कर देते हैं, ख़राब चीज़ें पाकिस्तानी लोग ठीक करते हैं। माशाल्लाह इतना प्यारा ब्रेन है हमारी कौम का, चलता क्यों नहीं है, इसकी वजह समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुछ लोगों को वाकई ऐसा चुना, तो मैं तो इतनी इंप्रेस्ड हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि खालिद बिन वलीद पर मैंने एक अलग लेक्चर दिया हुआ है, मेरी ज़िंदगी के उन लेक्चर्स में से वो एक लेक्चर है कि जिसको देते वक्त बंदा फील करता है कि मैं बड़ी मज़े की कोई कॉफ़ी पी रहा हूँ, टेस्ट इंजॉय था। हॉस्टलों में शायद दिया था आज से कोई 10-12 साल पहले। इन लोगों से सीखा है मैंने आज तक ज़िंदगी में, जो सीखा है या कुरान से सीखा है या सीरत से सीखा है या सहाबा से सीखा है, क्योंकि इनके साथ आपका ताल्लुक जुड़ जाए, इनके साथ आपका माइंड सिंकनाइज कर जाए, तो आप वही कर लेते हैं जो होता है। और फिर फतेह मक्का, फतेह मक्का के फौरे बाद आपको पता है कि सुलह हुदैबिया के अगले ही 2 साल के अंदर फतेह मक्का का मौका आ गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो, आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस लश्कर में मौजूद थे जो मक्का फतह करने गया। दो हिस्से होते हैं, एक मईमना और एक मईसरा, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। खालिद बिन वलीद को आपने मईमना की तरफ डाल दिया और लेफ्ट साइड पर हजरत जुबैर बिन अवाम थे और ये आगे चल रहे थे, पीछे अबू उबैदा के साथ पैदल चलने वाले लोग मौजूद थे और अल्लाह के नबी थे। मक्का की गलियों में से खालिद बिन वलीद अपना लश्कर गुजार रहे थे और लिखने वाले कहते हैं कि खालिद के दिल की कैफियत को इस वक्त पूछे कि वो मक्का जिसके गली कूचों में ये खेल कूद के बड़े हुए थे, जैसे आपका होमलैंड, जैसे आपका कोई अपना मुल्क हो, और आज उन्हीं गलियों में नबी की क़यादत में एक इतने बड़े लश्कर की वो लीडरशिप पे थे और वो रो रहे थे कि अल्लाह ने मुझे इतना ऑनर दे दिया कि मैं नबी की लीडरशिप के अंदर आकर इस घर की फतह में शामिल हूँ। देखिए आपको तो सजदों में सर रख कर रोना चाहिए कि अल्लाह ने हमें चुना। हमें मुसलमानों को आज अगर सिर्फ और सिर्फ अपने इस मिशन और इस काम की सच्चाई का यकीन आ जाए, सर सजदे से ना मरा उठे, जानवर और घोड़े और कैटल की तरह रुकू की हालत में हमारी गर्दनें झुकी रहें, कहाँ हम बरातों और वलीमों में अपने आप को सजा के गर्दन अकड़ा के खड़े होते हैं, वो कोई काम है? अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर इसके बाद आपको पता है कि जब मक्का फतह होता है, 8 हिजरी थी, रमज़ान थी, महीना था ऐसे ही जैसे ये आज है, और फिर माह शवाल में ताइफ की तरफ गए, और भी इनकी जंगें हैं, और नबी सल्लम की ज़िंदगी के बाद इनकी ज़िंदगी का एक दौर शुरू हुआ, यानी नबी की ज़िंदगी में ग़ज़वे मौता यरमूक, यरमूक बाद में हुई थी, और बहुत इसमें कर दिया अल्लाह ने इनको, बहुत दिया। कहते थे कि दुश्मनों के सर पे बिजली बन के टूटते थे, दुश्मन इनका नाम सुन के कांपने लग जाता था, और जो मक्का से मदीना पहुंचे थे और फिर अल्लाह के नबी के साथ रहकर हक जो दिया, लेकिन जो ही नबी सल्लम दुनिया से गए, फितनों के दरवाजे खुल गए, कई मुर्तदीन हैं जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया देने से, कहीं आप कह लीजिए कि झूठे दावेदार थे मुसैलमा कज़ाब, उधर फिर मुसैलमा कज़ाब के साथ जो जंग हुई थी जिसको जंगे यरमूक कहते हैं, उसमें फिर अल्लाह ने जो इनको काम दिया, पढ़ने के काबिल है, इससे ज़्यादा वक्त और लगाऊंगी तो फिर पारा नहीं पूरा होगा आपका, लेकिन बस इतना समझिए कि दौरे सिद्दीकी आ जाता है, 2 साल हज़रत अबू बकर के दौर में यमामा थी जंग, और उसके बाद आप देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इनको नहीं हिलने दिया, इनके मिजाज में एक अपना था, देखिए जिसमें खूबियाँ होती हैं उसमें कुछ ना कुछ तो फिर उसकी बातें आपको माननी पड़ती है, और यमामा बिल्कुल वो जगह है जिधर आज रियास नाम का शहर है। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर तक बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, अब ज़रा असल आ जाइए अपने टॉपिक पे, हज़रत उमर का दौर आता, चंद वजूहात की बिना पे कहते हैं कि हज़रत उमर ने खिलाफत में आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, खालिद बिन वलीद को लीडरशिप से हटा के फॉलोअर्स में डाल दिया, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। एक तो इनकी कुछ आदात से उनको इख्तलाफ था, ये रिस्क बहुत लेते थे और हज़रत उमर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ओवर कॉन्फिडेंट कह लीजिए उनको लगते होंगे अपनी दौर पे। दूसरी बात यह है कि इनकी वजह से उस दौर के मुसलमानों का अकीदा बिगड़ता जा रहा था। कहते थे खालिद आ गए तो फतह हो जानी है, आज भी लोग कहते आप होंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उसी दिन ही गड़बड़ होगी जिस दिन आप होंगे। अबू बकर को भी उमर फारूक मशवरे देते होते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर कहते थे कि जो खालिद की खूबियाँ हैं मुझे इन खूबियों के बराबर कोई और दिखता नहीं है। इसमें भी सीखने की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है अपनी टीम में, सारी ज़िंदगी भी आप उनको साथ रखें लेकिन आप उनसे बचते बचाते और उनके साथ लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ेंगे वही आपके सामने फितना बन के खड़े हो जाएंगे। और ख़तरनाक तूफानों का रुख मोड़ने वाले खालिद बिन वलीद को जब हज़रत उमर ने लीडर से फॉलोअर पे रखा होगा तो क्या किया होगा उन्होंने, ये सुन लीजिए। ये है जो आज का आपको मौजू दिया है। सारा इख्तलाफ होने के बावजूद, सब काम होने के बावजूद भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। लोगों ने सोचा कि खालिद तो पीछे हट गए, अब छोड़ो को मुझे इस कुर्सी से उठाकर आप कह दें कि आप इधर नहीं बल्कि वो आखिरी पे जाके बैठे, मैं तो अल्लाह का शुक्र करूं, लेकिन आमतौर पे लोग शुक्र करते नहीं हैं। जो इस कुर्सी पे बैठ जाता है ना जिस पे मैं बैठी हूँ, वल्लाह ही वो पीछे आप वाली कुर्सियों पे नहीं बैठना पसंद करता। मैं सुना रही हूँ, मैं सुनूँ, मैं टीचर हूँ, लोग कहते हैं आप टीचर हैं, आपकी टीचर आके बैठी हैं पढ़ रही हैं, ये फितने हैं। नहीं, फिर लोग कहेंगे नहीं इनको शायद कुछ नहीं आता इसलिए ये दूसरी जगहों से भी सीखने जाती हैं। ये हैं वो फितने जो आज हमारे दीन के अंदर दिखते हैं। कैसे अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत खालिद बिन वलीद का दिल बड़ा बनाया, जब हज़रत उमर ने इनको पीछे किया तो कुछ लोग इनके पास अकेले में आ गए, कहने लगे आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, आप तो मंझे हुए, आपकी क्या खूबियाँ। देखे ना आज इमाम काबा, चलिए सबको इमाम सुदेस से मोहब्बत है, इमाम सुदेस से कोई कह दे कि आज के वक्त खबरदार अब हरम में नमाज पढ़ें, चलिए जाइए वहाँ जहाँ सारे पीछे बैठ के पढ़ते हैं आप भी पढ़ें, कितना बड़ा फितना। ये सियासत के फितने नहीं रोज़ देखते, किसको चढ़ाया किसको उतारा, कौन गिराया गया, किसको अदम एतमाद किसको क्या, लोग बर्दाश्त नहीं करते, अपने अंदर कोई खूबी नहीं होती फिर भी नहीं वो नीचे बैठना पसंद करते। लेकिन खालिद बिन वलीद के वो अल्फाज सोने के पानी से लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं उमर के खिलाफ एक मास जमा करके एक पार्टी बनाऊंगा फिर एक ग्रुप बनाऊंगा, आज हमारा हाल के ग्रुप विद इन ग्रुप, मेन स्ट्रीम अपने साथ चलती रहती है, आप साथ अपना भी कुछ ना कुछ कारोबार चला ही रखते हैं कि चले कुछ नेकियां आपके एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएं दूसरों में, और अपने बहाने लोगों को उधर से पकड़ के उधर फेंकते रहेंगे और आप अपने जो में बड़ी नेकियां करते हैं। देखिए 101 फितना है दीन का और इल्म का, उसकी इधर आप जैसे भोले भाले लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनको ये चीज़ें हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग आप उस चीज़ से ना जुड़ जाएं, आप उन्हीं की चीज़ें अपने नाम से पेश कर दें, सिर्फ इसलिए मेन सोर्सेस ना पता लग जाएं, फिर मेरे से कौन सुनेगा। ये सिर्फ उसको डर होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है। सूरज चमकता है तो वो नाइट बल्ब तो नज़र ही नहीं आते सारा दिन, ट्यूबलाइटें तो खत्म, बड़ा बल्ब जलेगा छोटे ज़रूर बुझेंगे, लिख के रख ले। मदीना के यहूद का यही तो इशू था, कहते थे अगर हमने मोहम्मद को मान लिया तो हमें लीडर कौन मानेगा, तो क्या फिर क्या हुआ, अल्लाह ने नबी का नाम नहीं रखा, वह रफ़ान अल्लाह का जिक्र रख, क्योंकि सच सच होता है झूठ झूठ होता है, हसद और बुग़ज़ एक ऐसा ही होता है। तो बहरहाल ये सारी कहानियाँ पढ़ते वक्त आपको मुझे क्या समझ आया कि अगर आपको काम प्यारा है तो फिर आप इन चीज़ों को मैटर नहीं करेंगे। जब इनको माजूल किया और जब इनके ऊपर ये बड़ा फितना आया, असल में ये वक्त बता रहा था कि हज़रत खालिद की सारी दीन की खिदमतें अल्लाह के लिए थी, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु के लिए थी। ये नहीं थी कि लोग मुझे बड़ा समझे, मेरी मकबूलियत हो, मैं हर दिल अजीज़ हो जाऊँ, लोग मेरे आगे पीछे फिरे और मैं लोगों का करूँ। कहते कि जिस वक्त इनको उतारा ये लोगों की आंखों का तारा थे, जैसे एक लीडर है आपके मुल्क में और लोग उसके नाम पे उठ के खड़े हो जाते हैं कि आपने उसको क्यों उतारा, मोहब्बत करते हैं ना लोग जिससे, उससे ऐसे ही होता है। इन्होंने कहा नहीं तो ना सही, मैं उमर के लिए तो नहीं लड़ता था, मैं तो रब उमर के लिए लड़ता था। इनका जुमला है तारीख में कि मैं तो रब के लिए लड़ता था, कल तक लीडर बन के आज फॉलोअर बन के, कल तक मैं सिपे सलार बन के अल्लाह को राजी करना चाहता था और आज मैं सिपाही बन के करता हूँ। ये थे गाजी तेरे पुरसरार बंदे। याद रखिए असल में ये चीज़ हमारे लिए बहुत सीखने वाली है। अल्लाह की जो रहमतें आज उम्मत मुस्लिमा से हटी हुई दिखती है ना, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है। और आपको था कि इनकी डेथ कब हुई, बहुत छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, 21 हिजरी में ये इस दुनिया से चले गए थे। 18 रमज़ान था उस दिन, और शहर था मुल्क शाम का खेम्स, वहाँ इनकी डेथ हुई थी। बहुत थोड़े दिन बीमार हुए। हज़रत उमर को जब इनकी डेथ की खबर हुई, इतना रिग्रेट उनको हुआ, उन्होंने कहा मैंने तो सोच लिया था कि मैंने खालिद को दोबारा उसी पोस्ट पे लाना है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अबू दरदा के ज़रिए से वसीयत भिजवाई थी हज़रत खालिद ने हज़रत उमर को कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी वफ़ात के बाद मेरा घोड़ा और मेरी तलवार ये आप किसी को भी दे दीजिएगा जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर इसको इस्तेमाल करेगा। वक्फ कर दी। फिर कहने लगे मदीना में मेरा जो घर है ना, वो मैं आपको देता हूँ, आप किसी भी ज़रूरतमंद को सदक़े में दे दीजिए। क्यों ना रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु। आज किसी का फीडबैक था, उन्होंने कहा कि आज तक जितने दौरे कुरान से जो खैर फूटी है, आपके सिर्फ इस रजी अल्लाह अन्हु के टॉपिक से फैलेगी, जितना ये दिलों को टच कर रहा है कि हम कौन और वो कौन। और उसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई थी कि उनका जुमला क्या था कि मैं सोचती थी जब कभी आप रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा उस आयत पे आएंगी ना, तो आप कुछ बता देंगी, तो अब तो हमें हर पारे में से रदी अल्लाह अन्हु दिख रहा है। हमने कुरान को इसलिए पढ़ा भी तो कम है ना, करें क्या, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं। सवाब बरकत या हसूले सवाब या इसाले सवाब, जिंदगी में हसूले सवाब पारा कब पूरा होगा भाई, पूरा करके आपने करना क्या है, दौरे कुरान कब पूरा होगा, कितने किए आपने दौरे कुरान, और भी कर लें तो बस तमगा लगाना है, इधर एक लिखना है टैग है आपका, नेम प्लेट है, या आपने अपने विजिटिंग कार्ड में रखना है कि जी अच्छा जी ये है तो वो है, नहीं कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रस्म है ये सिर्फ एक नाम की बात है, आपका दिल ना बदले तो आपको क्या मिला। तो असल काम करते रहिए, दिल पे लिख ले, और अगर आपको कभी भी अल्लाह ने किसी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है, आपको अल्लाह ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी है, कोई एक लीडर कोई एक मेंटोर दे दिया है, तो उसमें अपनी जगह ना छोड़िए कभी, एक सेकंड लगेगा तुम रूठे हम छूटे। आज के बारे में भी आएगा मैं यरतद मिन को मान दीन ही, जाते हो तो 100 दफ़ा जाओ, फसौफ याति अल्लाह बिकौमिन, अल्लाह ऐसी कौम को ले आएगा कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहुम। हमने ना असल में कुरान को स्पिरिचुअली पढ़ा भी नहीं है, तो इख्तलाफ राय लाजिम है, होगा रहेगा, और जो भी इज्तमाही काम करेगा उसकी सबसे बड़ी रुकावट इख्तलाफ है। सहाबे कराम को अल्लाह के खौफ ने इतना बेनफ्स बना दिया था कि इख्तलाफात से बुलंद होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते थे। अल्लाह के नबी के ज़माने में उन्होंने अरब और उसके इर्द गिर्द जब इस्लाम की दावत पहुँचाई, आपकी वफ़ात के बाद ना किसी को माल की फ़िक्र रही ना जाह की फ़िक्र रही, हमें क्या मिलेगा हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। हर सहाबी ऐसे फैला, मुल्कों में फैल गए, हर सहाबी का घर उस दौर में एक छोटा सा मदरसा बना हुआ था, जहाँ वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को अरबी सिखाते, कुरान सुन्नत करते। अब देखिए जो लोग लड़ते थे ना वॉरियर्स, जैसे खालिद बिन वलीद और अली जैसे लोग, वो जंग में मुल्क फ़तेह करते, वो हट जाते, बाकी सारे इल्मी शख्सियात उस मुल्क में जाकर लोगों को अलिफ़ बाता हरूफ तहजी सिखाना शुरू होती, क्योंकि अजमी इलाके थे रोमन्स थे। तो आज भी इस कुरान के पानी को आम करने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि वाकई इनको कहना चाहिए कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे। तो ये सारी बात जो मैंने आपसे रखी है ना, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे जो लोगों में है। अपने लिए अल्लाह की रज़ा के सारे अल्फाज को अगर आप देख चुके हैं, तो फिर इसको पढ़ते हुए दुआ कीजिए कि आज अगर मुझे भी अल्लाह ने ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका दिया। अपनी अपनी खूबियों को पहचानिए और खप जाइए, बस आप वही काम कर सकते हैं जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है।